और कुसुमावली उनकी खो गई। कुसुमावली मैंने उसकी बूंदे मोती के समान कुछ गिरने लगे, द्रवित होकर के स्नेह से स्नेह उमड़ा और उससे उदित कुसुमावली, कुसुम फूल अवली मैंने समूह धीरे 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 गिरने लगी। उसे हुआ क्या, मेघ ने देखा इनको कष्ट हो रहा है, इसलिए कृष्ण जहां जहां चल रहे हैं अनु वो कृष्ण के तरफ में चलने लग गया, कृष्ण के ऊपर में सूर्य की धूप न पड़े इसलिए अनु शब्द का यहां पर यूज हुआ। सूरज मान ली कि इधर है और कृष्ण इधर जा रहे हैं तो वो बीच में इधर में आ गया। यदि मुख में सामने की तरफ में सूर्य और इधर जा रहे हैं तो भी बीच में आ गया। एक आदमी छाता पकड़ करके, हमारे गुरु जी चलते थे और मुरी महाराज जी का नाम सुना होगा, एक महाराज क्या संतरे गुरु महाराज जी हमारे चलते थे तो मुनि महाराज उनका छत्र धारण करते, दूसरे को लेने नहीं देते, पता जी जो तुम लोग जानता नहीं है, हम लोगों को नहीं लेने, तुम लोग जानता नहीं है ये छाता कैसे लिया जाता है। और सचमुच में उनको बड़ी भंगी थी, कहीं भी उनको धूप में उनकी चौबीसों घंटा ये दृष्टि रहती थी ये कहीं उनका अंग कोई धूप में आना जाए, इसलिए शख्स ने सूरज को रख करके लक्ष में और वो छाता धारण करते, वो भी एक कला है।
इनके मित्र जो हैं वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण पर कैसे छाया,
यदि छाया होगी मेघ यदि हो तो एक तो प्यास अपने आप बुझ जाती है, शरीर की क्लांति भी दूर हो जाती है और उस पर दो चार बूंदे यदि पड़े ना तो कहना ही क्या, और पानी पीने की प्यास भी नहीं रह जाएगी, शरीर भी शांत हो जाएगा, ठंड हो जाएगी, सब प्रकार से आनंद उठाएगा। इसलिए ऐसा समझ करके प्रेम वर्णित कर उदिता कुसुमावली सत्सुर बधार स्वबकुशाम बुद्ध आप सत्सुर बधार। कृष्ण को सुख देने के लिए, सख्त भाव का निर्वाह करने के लिए उसने किया कि अपने शरीर को ही छाता बना दिया, जैसे छाता होता है ऐसा वो छाता बन गया वो उनका सखा में, और ऐसा छाता बना कि जिसमें मुक्ते लगे हुए, मुक्ते झर रहे हैं, मुक्ता झरना माने क्या, वो बूंदे जो झर रही मुक्ते और बड़ी सुशीतल भी है, ऐसा उसमें से झरना मानो मोती झर रहे हैं और वो बन गया क्या स्वरूप से अपने से आपपत्रम। आपपत्रम माने क्या,
आप आपक माने गर्मी, प्र माने जो त्राण करता है उसको आपको हो गया विचार, तो इस तरह से वो बन गया और उनकी सेवा करने लगा। जहां जहां कृष्ण जाते हैं वहीं वहीं वो चलता है और वैसे वैसे ही सेवा करता है। हम लोग तो ऐसा कर नहीं सकती, संभव पर नहीं, आकाश में तो हम चल नहीं सकती, कृष्ण के साथ में हम चल नहीं सकती, ये सेवा हमारे लिए संभव है, ये तो उन्हीं लोगों के लिए ही संभव है। हमारा ऐसा कभी होता जब हम भी मरने के बाद में मेघ ही बन जाती, हम मेघ बन करके कृष्ण की सब समय सेवा करते, इस प्रकार की उनके हृदय में भावना है, ये संभव है। बड़ा खेद उनको हुआ और खेद होने के बाद में पूछने लगी कि अब क्या करें, हम लोग कृष्ण की सेवा हम लोगों के द्वारा कभी संभव पर नहीं होगी। अब ऐसा सोच करके कुछ निराश ही हो गई और निराश होने पर उनकी दृष्टि गोवर्धन में गई और वहां जाकर के हैं तो बैठी यहां किंतु वहां पर पहुंच गई और देखा सबर जाति की पुल्ली पुनिंद कन्याओं की तरफ में। पुनिंद कन्याएं होती हैं एक तरह से कोल भीड़ जाति की, वो कुछ अनार्य जैसे लोग कहते हैं कि जाते कि उनका पानी छुआ छुआ ये सब नहीं चलता है, कुछ काले ताली भी होती हैं या होते हैं। ये पुलिंद लोग शिविका बहन का कार्य करते थे पहले। शिविका बहन समझते हैं, पालकी का चलाना, फल चलाना और सब जो काम है, मोट बहना, खेत काटना, ये सब काम करते हैं। और इनकी स्त्रियां जंगल में जंगली साग ताग कहीं से ले आई और उपले उपले माने सूखे कंडे या गोबर इत्यादि को सवेरे जाकर के वो चुनाना और जीवन निर्वाह इस प्रकार से करना, यही इनका काम है। भाव इन लोगों की तो महिमा ही क्या है। गांव से दूर दराज में रहने वाली ये उन पुलिंदों की कन्याएं इतनी सौभाग्यवान है कि हमसे लाखों कोटि सौभाग्य। क्यों? पूर्णा पुलिंद मुरुगाय पदाब्ज राग शिकुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मरण जतुनरीशितेन लेप्यंत आनन कुचे सुजहुस्तदाधि। पूर्णा पुलिंद मुरुगाय पदाब्ज राग, वो ये पुलिंद कन्याएं सफल जीवन है। पूर्णा, हम लोग पूर्ण नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, इनके आगे इनका जीवन ही एकमात्र पुलिंद कन्या है। वस्तु से संपर्क नहीं, वस्तु के संपर्क में आने वाले उपकरणों से संपर्क में ही पुलिंदों की ये स्थिति। कृष्ण से संबंध इनका नहीं, कृष्ण गोप जाति के, और इनसे क्या संपर्क, कोई भी संपर्क नहीं, कभी देखा देखी भी नहीं। तो अभी कृष्ण की बंसी से वो परिचित है, बंसी बंसी, और कृष्ण के नाम से भी और रूप से कुछ कुछ वो परिचित है, दूर से समझे, किंतु कृष्ण के भाव में कितने अधिक विभावित हो जाती हैं। क्या है, इधर देखो इधर देखो, इतने अधिक विभावित हो जाती है कि हमारा जन्म बेकार का गया, बेकार का गया, इनका ही जन्म सार्थक है। उरुगाय पदाब्ज राग, उरुगाय पदाब्ज राग, उरुगाय के चरण के अनुराग से, चरण कमल के राग से। उरु गाय माने होता है, उरु माने गंभीर या उच्च स्वर से, गाय वेद भी जिनका जिनकी महिमा का वो डंका की चोट में बजा करके कहते हैं, ये कृष्ण से बढ़ करके और कोई कर सकता नहीं। श्रीमद् भागवत भी कहते हैं, वेद उपनिषद शास्त्र पुराण सभी प्रमाण के रूप में उच्च स्वर से हाथ उठा करके जिनकी महिमा का गान करते हैं, इनसे बढ़कर के पर्वत तो कुछ नहीं है, और उनके लीला कथाओं का गान करते हैं। ये इसको उत्तम श्लोक भी कहा गया, अच्छे अच्छे श्लोकों में, उत्तम श्लोकों में जिनके जिनकी महिमा का जो गान करते हैं, इसलिए ये उत्तम श्लोक है। ये कृष्ण ही है, विष्णु तत्व भगवत तत्व के लिए ही आया है। यहां पर गुरु गाय का एक और अर्थ करते हैं, गुरु माने ऊंचे स्वर से वेणु के द्वारा जो स्वर बाहर करते हैं उनको कहते हैं गुरु गायती, उच्च शब्देन उच्चेन गायती, वंशी गाय वंशी वंशी द्वारा न गाय, वंशी के द्वारा वो गायन करते हैं, ये गुरु गाय। ऐसे जो कृष्ण हैं उनके चरण कमल पदार्थ राग, उनके चरण कमलों का राग, कुमकुम कोई चरणों में नहीं लगाता, लगाता है इसके बाद श्री कुमकुमेन आया। कुमकुम लगाया जाता है अंगों में, इधर मुख मंडल में भी कुमकुम लगा लेते हैं और सब अंगों में लगाया जा सकता है। पैर में लगाने की तो क्या चीज है, अलता लगाया जाता है और भी अलता लगाती हैं स्त्रियां अधिक, पुरुष लोग अलता नहीं लगाते। कभी मां उनके पैरों में ये जंगल में जाते हैं मैल टैल बैठ जाती है और सुंदर पैर लगेंगे, इसलिए कभी कभी सखियां सब अलता उनको भी पहना देती हैं अथवा अलता से उनके चरण मिलने के वजह से उनका चरण देख तो ऐसे ही लाल और वो रंग चढ़ गया अलता के संपर्क से, अलता उन गोपियों के चरणों की और उनसे लग जाता है। इसलिए वो राग श्री कुमकुमेन दहिता तन मंडितेन, वो श्री कुमकुम और ऊपर से लग गया कहां, उरुगाय के चरणों में। उरुगाय माने यहां पर कृष्ण है जो उच्च स्वर से बंसी की तान छेड़ते हैं, उनके चरणों में पहले लगा अलता कारण। एक तो चरण अपने आप लाल और उसके ऊपर में वो चढ़ा और उसके बाद में वो कहते हैं श्री कुमकुमेन दैत्यासन मंडित है। श्री कुमकुमेन, कुमकुम का विशेषण श्री ये तो संभव नहीं, तो ये किसका विशेषण होना चाहिए, ये दैता श्री दैता कुमकुमेन, जो दैता उनकी जो प्राण से भी प्यारी है उसके चरणों उसके उसका कहीं कुमकुम जरूर लगा होगा। श्री मैंने क्या होगा, हमारे टीकाकारों ने श्री शब्द का अर्थ श्रीमती राधिका किया है, बहुत जगहों में इसका प्रमाण विशेष करके ये लिया जो उनके श्री अंगों का कुमकुम है राधिका जी का और सखियों का नहीं, हो सकता है सखियों का भी कुमकुम है। ये भाव नेत्र से जो भी ये कह रही है वो देख रही है कि इनकी किसी सबसे प्रियतमा अधिक होगी उसी के अंगों का कुमकुम इनके श्री चरणों में लगा है कृष्ण के, तो वो श्री है जरूर श्री होगी। तो वो श्री कौन है, वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वो हैं श्री, वो है ना वेणु पड़ंतम अरविंद दल इसमें है ना पहला में चिंतामणि प्रकर्षत्म सुकल्प वृक्ष लक्षा दृतेषु सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शतसंक्रमणम् गोविंदमादि पुरुषम लक्ष्मी सहस्त्र शत सिद्धम श्रिय कांता कांता वहां पर
कांता
सब लक्ष्मी, इसलिए वहां पर भी वर्णन किया गया क्या बंदर है। तो कुमेन दैता स्थल इधर देखो उधर देखने की जरूरत नहीं, श्री कुमकुमेन दैता वो अवश्य उनकी ये दैता हो, इसी के लिए वो श्रीमद् भागवत में कहते हैं चलत जग प्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पतम सिड़तृणांगुरई सिदी कलिलतांगमन। चलत जग प्रजा, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए पशुओं को वृंदावन से निकल करके अपने गोष्ठ से निकल करके और वृंदावन में जब प्रवेश करते, चलत जद प्रजा चार अजन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, नलिन नलिन माने होता है कमलिन पद्म, उससे भी अधिक जिनके चरण कमल अत्यंत सुकुमार से भी परम सुकुमार है, मृदुल से भी मृदुल है और उनसे भी सुगंधित है, उनसे भी सुशीतल है। कमल में बहुत से गुण हैं, सुगंधित होता है सुशीतल होता है
और सुकुमार जो
सुकुमार भी होता है और सुंदर सुगंध वाला होता है और सरस होता है, सभी उसमें गुण है। कृष्णचंद्र का ये सब गुणों में उससे भी अधिक गुण में बढ़े हुए हैं। उनके चरणों की उपमा में वो बल्कि टिक नहीं सकते, उसको भी पराजित करके ऊपर में वो विराज है चरण कमल। तो वो क्या चलत जत प्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम क्षण तुनंग कुरई सिद्धित इति। वो क्या सोच रही है, क्या कृष्ण वन में गोचारण करते उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके सुकोमल चरणों में क्या तीन कंकड़ और कांटे नहीं चुभते होंगे, छोटे छोटे नोकीले पहाड़ों पर पत्थरों के टुकड़े जाते हैं। हम लोग जब परिक्रमा और दिव्य धाम की करते हैं तो जब चलते हैं वहां से नृसिंहपल्ली से और नवद्वीप के लिए और सड़क बन रही थी और ट्रक का ट्रक वो बड़े बड़े कंकड़ रखे गए हैं वो रास्ते में बनाने के लिए और चारों तरफ सड़क में ऊंची तरह गए हैं और यात्री चल रहे हैं तो यात्री सड़क पर नहीं चलते, वो घास खोजते हैं और उसमें भी वो कंकड़। और एक तो यात्री सब थके हुए पैर सुकोमल, कभी कोई बिना जूता और इसी के चलने में महिलाएं तो कभी निकलती नहीं और पैर में चुपते हैं, उस समय मालूम पड़ता है जी कितना कष्ट होता है। अनुभूति के साथ ये करेंगे क्या कृष्ण के चरण कमलों में ये चुभते नहीं होंगे। कली लतांग मन कांत गच्छति, कली लतांग मन मन के साथ में इनका कलिलता, कलिलता माने कलहम लाती इति कलिलता, जिसे कलह उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं कलिलता। कलह मन के साथ में इनका कलह उत्पन्न हो जाता है। ये कहती हैं, मन कहता है जो अरे इनके चरण बड़े सुकुमार हैं, कृष्ण चलता होंगे तो ये जरूर कांटे पूछे ये भीतर में लगते होंगे। तो ये कहती हैं तो रोज रोज जाता क्यों है, अरे यदि एक दिन कांटा चुभता या पत्थर के टुकड़े चुभ जाते या घासों का अंकुर उसमें घुस जाता तो कष्ट होता, दूसरे दिन जाता नहीं तो मालूम होता कि वो चुभता नहीं, वैसे आराम के साथ में गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। ये कह रही गोपिया, मन का तारे दुर्बुद्धे, तुमको बुद्धि टुद्धि कुछ नहीं, जरूर उनको लगता है तुम नहीं अनुभव करती, तुमको अनुभूति नहीं। अरे यदि गायें चलती हैं चरने के लिए जाती हैं तो गायें क्या सपाट मैदान में चलेंगी, बड़े बड़े रास्ते पर पिच ढले हुए पर ही चलेंगी, अरे उनको तो जहां हरी घास दिखेगी चाहे कांटा हो पर्वत हो नदी हो नाला हो कूद करके इधर से उधर में, उनके तो पैर बंधे हुए हैं ना फूल से बंधे हुए, उनमें कुछ भेद नहीं करता। ये कहती हैं गोपियां अरे तू तो हमको निर्बुद्ध, तुम भी मूर्ख ही है, क्या इनको आंख नहीं जो देख करके चलेंगे, अंधे थोड़े हैं ये तो आंख से देख करके चलेंगे चलते होंगे, यहां कांटा कुछ होगा उसको बचा करके चलते होंगे। तो कहते तुम ही दुर्बुद्धि है भाई, तू समझती नहीं, अरे देख करके सब समय कैसे चलेंगे, वो जब दौड़ करके भगती होंगी तो उनको रक्षा करने के लिए जब लठिया लेकर के दौड़ते होंगे तो रास्ता ही देख करके चलेंगे। तो फिर ये कहती हैं तुम जो कहता है, हमने पहले कहा कि उनको आंख नहीं है क्या, अरे तो दौड़ने की जरूरत क्या है, जरा ठहरी जाएं, दौड़ने की क्या जरूरत है और उधर जाने की क्या जरूरत है, तो दौड़ेंगे नहीं तो गायों को कष्ट होगा, ये तो देखना है ना, उनको तो प्रभु मानते हैं, तुम लोग तो समझती नहीं है और अपने को सेवक मानते हैं, इसलिए उनको जाना जरूरी है। तो ये गोपियां के ठीक कहता है तू, किंतु उनके चरण बड़े कोमल हैं। हम तो अब सह नहीं सकते, अजय तुम लोग सह लो, मन कहता है मैं तो अभी निकला चला उनके साथ ही, माने मतलब क्या, तुम्हारे शरीर में उमन है ना, तो मैं तो अभी से निकला और तुम लोग उनका यह कष्ट देख करके तुम लोग जीवित रहो या दुख करो, मैं तो अब एक सेकंड भी नहीं करूंगा, अब मैं तो अब चल पड़ा, मतलब शरीर को छोड़ दिया तो यह शरीर रहेगा थोड़े तो मरेगा। ऐसे कलिलतान मन कांत गच्छति, हे कांत तुम्हारे लिए ऐसी ही गोपियां ये चिंता करती हैं, ऐसी चिंता करते 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 कहती हैं, तत्ते सुजात चरणम बहुहम तनेशु तेना आत्मिन अटस तद व्यतेन किंचित कृपादिभिः। तत्ते सुजात, ऐसे चरण जो कमल आपके हैं अत्यंत मृदुल हैं, हम कभी भी नहीं चाहती कि ये तीनों पर और कंकड़ों पर चढ़ करके इनको कष्ट हो, इसलिए हम कभी कभी उन चरण कमलों को बड़े भय के साथ में डर डर करके और बड़ी सावधानी के साथ में हम अपने अंगों में धारण करते हैं, वो चरण कमल लिए और इसके द्वारा वो वन जंगल में चले या दौड़े गर्म रेती में और कंकड़ों में, क्या हमारे मन में दुख नहीं होगा, हम तो जरूर दुखी। अब उस श्लोक में जो है तत्ते सुजात चरणम बरुहम तनेशु, वो जो कभी कभी जो धारण करती हैं, कौन धारण करता है, वो गोपियां, उन गोपियों में कौन गोपी, श्री माने जो सबकी श्री की भी जो परम कृष्ण की सबसे अधिक प्रियसी है वो धारण करती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इस श्लोक में कह रहे हैं, ये श्लोक महाभाव में भी उपरूढ़ और अधिरूढ़ इसके दो भाग हो जाते हैं, अधिरूढ़ भी रूढ़ से भी अधिक, अधिरूढ़ में भी एक होता है मादन और एक होता है मोदन, मादन ही विरह में मोदन हो जाता है और है ये मादन। मादन का यह लक्षण बतलाया है कि प्रतिक्षण प्रिय का दर्शन होने पर भी तृप्ति न होने के कारण कभी भी मैंने इनको नहीं देखा, ऐसा भाव का होना मादन का लक्षण, सब समय विरह की अनुभूति उसमें होती है, यह है मादन, सब समय प्रतिक्षण दर्शन होने पर भी, जैसे कभी श्यामला जी आई राधा जी से मिली, राधा जी आज हमारा सुप्रभात तुम्हारा दर्शन हो गया, किंतु यह सुप्रभात सुप्रभात के रूप में प्रतिफलित हो जाए परिणत हो जाए तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यवान समझू, सुप्रभात का सुप्रभात में परिणत होना क्या,
सुप्रभात में शुभ समाचार के साथ
बतला रहे हैं, सुप्रभात सुप्रभात के रूप में परिणत हो जाए अर्थात हमारी आशा रूपी कल्पलता में यदि फल कुछ हो जाए, आशा कर रही हूं किंतु आज तक आशा हमारी वो फलवती और फूलवती नहीं हुई, आज तुम्हारे आगमन से यदि हमारी आशा लता में फल कुछ आ जाए तो हमारा जीवन सार्थक होता है। अरे मैं तो देख रही हूं कि तुम्हारी आशा लता बढ़ते 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 काफी विस्तृत हो गई है और वो फूलों से और फलों से वो लत गई और उसमें वो परिपक्व अंतिम दशा में परिपक्व भी हो चुके हैं और तुम उस फल का रसा स्वादन भी करती हो और मैं स्पष्ट रूप से उन लक्षणों को देख रही हूं जो कि फल चूसने से होता है, ये तो मैं खुद देख रही हूं और तुम कहती हो ये हमने फल ही नहीं देखा, तो यदि फल नहीं देखा तो अब फल नहीं वाला है, ये खा करके उनको सांत्वना देती है और उनको समझा देती है कि यह फल लग चुका है। अतः तुम कृष्ण का दर्शन हमें कभी नहीं हुआ, आज तक कभी मिलन ही नहीं हुआ, हमने कृष्ण को देखा ही नहीं, जो सांवले की गोरे कैसे हैं, ये कौन कह रहा है? श्रीमती राधिका जी का अनुभूत अनुभूत विषय को भी सब समय अनुभूत की न्याय दिखाई देने का नाम वो अभी जो बतला रहा
माधव
का लक्षण है, प्रधान लक्षण ये है सब समय मिलने पर। इसलिए ये श्लोक जो है मादन स्थिति का है, सर्वोत्तम स्थिति का, जो और किसी सखी में भी नहीं हुआ, केवल मात्र राधा जी में नहीं होगा, और किसी में ये लक्षण नहीं जाएगा। जैसे महाप्रभु जी के वो जो अष्टम श्लोक है
अश्विस्वादान,
ये केवल मात्र श्रीमती राधिका का, जुगायतन निमिषेन में ललिता विशाखा इत्यादि का आ जाएगा, किंतु इस श्लोक में अंतिम श्लोक में श्रीमती महाभावती श्रीमती राधिका के अतिरिक्त तो वो कभी भी लक्षण दूसरे में संक्रमित नहीं होगा। तो इसलिए स्वयं राधिका जी कह रही हूं, इसलिए करी अनुभूत की बात, सब समय अनुभूत है तभी तत्ते सुजात चरणाम्बर उहम, ये राधिका जी के लिए कहा गया है। इसलिए किंतु एक बात है, जब अनुभूति नहीं है तो सखियां जब उस ऐसे देखेंगी ना वो उसको कुमकुम को घासों पर, वो समझेंगे कि राधिका जी के चरणों का ये राधिका जी का कुमकुम है, और राधिका जी देखेंगी तो वो कहेंगे उनकी और कोई प्रियतमा है और कोई सखियां हैं उनका है, परस्पर के लिए ऐसा शो उसी के लिए का सी कुमकुमेन दलिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मर भुज तृण रूषितेन। अब वो कृष्ण सवेरे भोर में 3 बजे के करीब अपनी प्रियतमा के साथ में विचरण कर रहे हैं, और उनके चरणों से ओष बिंदुओं के मिलने से कुछ वो द्रवित होकर के और घासों के ऊपर में लग गया, और भोर में सवेरे वो पुलिंद कन्याई घास अथवा लकड़ी बिनने अथवा उपल अथवा गोबर उसके लिए आई और देखा ना? तब दर्शन उसको देखा, पहले देखा कैसे, कृष्ण के चरण कमल में तो ऐसे ही सुगंध है और कुमकुम मिला हुआ सुगंध और भी प्राणों को मादकता ला देता है, उनके समस्त अंगों में ही हाथों में भी नजर कुमकुम अगरू का गंध है, ना कौन सा गंध है, जिधर जाते हैं उधर ही वो सुगंध फैल जाती है। उसी के लिए तद दर्शन देखा पहले सुगंध से, और देख करके ही सुगंध बैठ गई और निकट जाकर के उसको देखा और उसका सुगंध लिया, और सुगंध लेते ही न जाने उसमें कैसी मादकता अंग अंग उनका रोमांचित हो उठा, और उन्होंने कल्पना की उस जैसे बतलाया गया है ना कि औषधों में और मंत्र में कुछ न कुछ शक्ति जरूर होती है, भले ही ऊपर से नहीं मालूम होगा, जहां सांप झाड़ दिया विष उतर जाएगा, वैसे ही मंत्र भी है औषधि भी है, औषधि न जानने पर भी यदि खिला दिया जाए तो वो रोग उपशम हो जाता है। कृष्ण के चरणों में भी कुछ ऐसी शक्ति है उसके रजह में जो प्रेम से मातवारा कर देता है, इसको प्रेम एकदम से वशीभूत हो गई है। तो तदर्शन स्मर रुज रोग हो गया, स्मर रोग तृण रूष तेना उसमें जो लग गया था उसी को फिर हाथ से स्पर्श करके उसको पहुंच लिया, सुंघा अपने शीर में अपने समस्त अंगों में उसको लगा दिया, उसका फल हुआ क्या, उन्होंने ये समझा दिया कृष्ण स्वयं मिल गए, मिलकर के उनका उत्ताप लिप्यंत आनंद कुछ ऐसु जहौ तदाधि उसको ग्रहण करके आओ जही स्पर्श किया कहीं हो। अब ये महाभावती गोपियां ये सोच रही हैं और जिसके श्री अंगों का ये कुंकुम है जो कि कृष्ण के चरणों में लगा है वो तो डायरेक्ट संबंध है ना। ऐसा कभी जन्म जन्मांतर में हम लोग हो सकती हैं ये तो कल्पना की बात है। ऐसा हम लोग प्रिय कभी कृष्ण का हो ही नहीं सकती है जो हमारे श्री अंगों का कुमकुम कृष्ण अपने चरणों में धारण कर सकते ये तो कभी संभव नहीं है। तो फिर पुलिंदियों का जैसा सौभाग्य भी हो जाए तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। यदि वह कुमकुम यदि घासों में तीर्ण में लग जाए और हम पुलिंदी होकर के जन्म लेकर के आए और कंडे बिनने के लिए भी हम आए और उसके पराग को हम उठा करके अपने लगा हमारा जीवन कृपाक्त हो जाएगा। क्या इतना प्रभु करेंगे हमारे ऊपर में कृपा या ऐसा कभी सौभाग्य होगा ऐसा सोच करके परम विभव हो ये हो रहा है। ये कौन श्रीमती राधिका जी हो रही है किसके चरणों का ये कुमकुम किसका है उन्हीं का है किंतु एकदम उनको विस्मित आत्म विस्मित बना दिया है और एक ऐसा निम्न कुल में जन्म लेने के लिए उनको उनके अंदर में ये भावना उठ रही है वो ऐसा हमारा भी हो जाता है। हो गया करके बड़ी खेद कर रही है तब वो कहने लगी हंताय मद्रय बला हरिदास वर्यो जग राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंतनोति सह गोपनयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवशकंदर कंदमूलय। इस प्रकार से अत्यंत खेद होकर के हंत हंत हाय हाय करने लगी अबला हम यथार्थ में अबला है हमसे और कोई अबला कोई भी समर्थ घर में शत्रु बाहर में शत्रु सर्वत्र ही शत्रु शत्रु घर में सास और ननद सभी शत्रु देवर तक भी देवर कौर है दुर्मद दुर्मद है मां मद से और ये अभिमान का की मूर्ति है कौन और जटिला क्या है
साधारण से जटिली बना देती है
बड़ी कठोर और क्या वो कठोर भाषी और भी बाकी सब परिवेश भी ऐसा ही हम लोगों के लिए उस पुलिंदी का भी सौभाग्य होना बड़ा भारी कठिन उन गोपियों की तो बात छोड़ तब एक बात अपने चेष्टा से कुछ भी नहीं होता यदि कोई महत की कृपा हो जाए तब तो हो सकता है। यह भक्ति अनुरागमयी भक्ति वैदिक भक्ति तो सबका अधिकार है सभी लोग कर सकते हैं शास्त्र सुना शास्त्र अवधारणामयी भक्ति जिसको स्वतः प्रेम की उत्पत्ति नहीं हुई है राग जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं है अनुवाप्तम रागम अभी प्राप्त नहीं हुआ रहा ऐसे लोग शास्त्र शासनमयी वाक्यों के द्वारा जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें वृद्धि करने को आती है ये वैधि भक्ति इसलिए वैधि भक्ति में मनुष्य मात्र का प्राणी मात्र का अधिकार हो सकता है। रागानुराग कोटि कोटि लोगों में से कोई किसी एक का अधिकार होता है उसमें बतलाया गया जैसे ये जो भक्ति होगी रागानुगा कैसे होती है उन्होंने उत्तर दिया जो भक्ति के द्वारा ही भक्ति होती है भक्त्या संजायता
भक्ति
भक्ति भक्ति के द्वारा होगी और नहीं तो भगवान की कृपा से हो जाए भगवान की कृपा से नहीं होगी भक्ति क्यों नहीं होगी? तो इसलिए भगवान सर्वसमर्थ है, यह बात ठीक है। जब ये होगी भी तो भगवान में भक्ति है ना, और उस भक्ति के द्वारा कुछ कर सकते हैं, किंतु भगवान के लिए संभव नहीं है। क्यों नहीं? यदि वो करते हैं किसी पर कृपा, तो उन पर उन्होंने कृपा किया, उस पर क्यों नहीं किया? ये दोष आएगा। भगवान समदर्शी हैं, किसी पर कृपा करेंगे उन पर क्यों नहीं करेंगे? कारण क्या बतलाइए? कुछ न कुछ तो कारण जरूर, कुछ कारण होगा। अहैतुकी हम नहीं जानते, उस पर कृपा किया, हमारे ऊपर में क्यों नहीं करेंगे? इसलिए दोष आ गया। किसी पर करते हैं, किसी पर नहीं करते। फिर उत्तम भक्त को ले लो, उत्तम भक्त में ही भक्तिमान है, इसलिए वो भी कर सकता है, किंतु ये भी करेगा तो वही दोष आएगा। भगवान भी करेंगे भक्ति के द्वारा ही, और भक्त भी करेगा भक्ति के द्वारा ही कृपा करेंगे, किंतु करेंगे उत्तम भक्त तो वो भी समदर्शी है। एक पर करेंगे, एक पर नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? लाखों जीव है उसमें दो एक को रगानुगा भक्ति देखी जाती है और पर नहीं, ऐसा क्यों? यदि भगवान की कृपा कहो तो भगवान पर असम्यता का दोष आएगा। यदि उत्तम भक्तों के लिए कहो तो उत्तम अधिकारी भी सब पर समदर्शी हूं, तो उनके लिए भी संभव नहीं। भक्ति तो इनमें भी है, वो भी कर सकते थे नहीं, तब हां मध्यम भक्त को अधिकार में यह बतलाया गया है। प्रेम प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करो ती समर्थन, भगवान के प्रति प्रेम, और त्रिविद भक्तों के ऊपर में त्रिविद प्रकार के उनके कर्तव्य, जो उनसे उन्नत हैं, सेवा मिला हुआ सख्त भाव,
सेवायुक्त मित्र,
सेवायुक्त मैत्री, बराबर वाले हैं उनके प्रति प्रेम माने स्नेह युक्त मैत्री, और जो अपने से नीचे वाले हैं
कृपाधिक
उन पर कृपा, और जो विरोधी हैं उनकी उपेक्षा करना, ये मध्यम भक्तों का ये लक्षण है। इसलिए यदि इनमें वैषम्य में देखा जाए, किसी को कृपा करते हैं क्यों नहीं करते हैं, तो ये दोष उनके लिए नहीं होता। आ रहा है समझ में? कुछ इनका ये लक्षण ही है, जब विरोधियों के ऊपर में कृपा नहीं करेंगे, केवल जो अनुगत हैं, भक्तिमान कुछ हैं, जिनको श्रद्धा है और जिन पर दृष्टि पड़ जाएगी और जिनको उचित समझेंगे उस पर कृपा करेंगे, ये इनका इनके अधिकार की क्षेत्र की बात। इसलिए ऐसा मध्यम अधिकारी जो उत्तम में पहुंचने वाले भी हैं, निंदा इत्यादि सुनना, अष्टकाव्य लीला इत्यादि में भी पूर्ण रूप से सक्षम, निंदा इत्यादि सबसे एकदम दूर रहने वाले, किसी की न निंदा करते हैं न
वंदना,
भक्तों की वंदना करेंगे, किंतु साधारण लोगों के लिए न प्रशंसित न गर्वित, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कर्मी है, योगी है, ज्ञानी है, राजनीतिज्ञ है, धनी है, विषयी है, बहुत दाता है, उसकी ये भक्त लोग प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि उनका वह गुण इनमें आ जाएगा, और उनकी निंदा भी नहीं करते, बिना किसी कारण से प्रसिद्ध लगी के लिए भी, देश रहित होकर के भी किसी की दिल्लगी में भी निंदा मत करो। परस्पर जब मिलो तो दिल्लगी टल्लगी भी मत परस्पर करो, नहीं तो दिल्लगी में ही एक दूसरे की निंदा होकर के फिर धीरे धीरे वो उग्र रूप धारण कर दे। इसलिए न प्रशंसा करो न निंदा भी सही दो। यदि कुछ करना भी है तो भक्तों की प्रशंसा करो या भक्ति की प्रशंसा करो। दुर्गुण यदि दुर्गुण भी है तो मत देखो, तुम मत जाओ, नहीं तो वो तुम में आ जाएंगे, तुम उनकी निंदा करेगा और उसी के जरिए तुम्हारे अंदर में आएंगे। इसलिए ये सबसे जो दूर रहने वाले हैं, अष्टकाली लीला में प्रवेश करते जाए, सबको यथा योग्य सम्मान देने वाले हैं, जान करके अधिकार, उत्तम को उत्तम जैसा, मध्यम को मध्यम जैसा, कनिष्ठ को कनिष्ठ जैसा। तो ऐसे जो अधिकारी हैं वो किसी पर कृपा कर देंगे, उस समय में भगवान से प्रार्थना करेंगे, षडंग शरणागति हई वे जहार कहा प्रार्थना सुन श्री नंद कुमार। जिनकी शरणागति है और जो मध्यम अधिकारी में वैसे हो गए हैं, वो यदि कहें हे प्रभु इन पर कृपा करें, तो भगवान की भी कृपा हो जाती है। इसलिए मध्यम भक्त जो हैं, उनके उनकी कृपा की अनुगामनी भगवत भक्ति की कृपा, भगवान की कृपा से जब दोनों मिलकर के करते हैं, तब वहां पर ये रागानुगा भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे नहीं हो जाएगा, न तो भगवान करेंगे न उत्तम अधिकारी, वो तो सब कुछ देखते हैं कि सभी लोग भगवान का भजन करने वाले हैं, आत्माराम होते हैं, आत्माराम से भी बहुत ऊपर, उनकी दृष्टि में कोई बद्ध ही नहीं है, सबका मुक्त महापुरुष के रूप में देते हैं। इसलिए नारद जी जैसे लोग हैं, जब मध्यम अधिकारी की दृष्टि से वैशास संपन्न होते हैं, तब तो किसी को मंत्र दे देते हैं, तो किसी को भी ये नहीं करते। सनातन गोस्वामी इत्यादि को, रूप गोस्वामी के देखो, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, सर्व दामोदर राय रामानंद, कितना शिष्य किया, उनकी दृष्टि कभी ऐसी आई ही नहीं। हरिदास ठाकुर किसी को शिष्य किया, न किसके शिष्य थे, ये भी पता है ये किसके शिष्य, शिष्य कौन है, यदि उसका अनुगत्य करता है, अनुगत्य करने से ही शिष्य का शिष्यत्व है, यदि जिससे दीक्षा लिया उसके भी अनुगत्य नहीं करता है, तो वो शिष्य ही नहीं। हमने प्रभुपाद के संबंध में सुना, शायद आप लोग भी जानते होंगे, उनका शिष्य एक नहीं थे, उनका नाम था क्या, बाबा जी, मैंने उनको देखा था, बहुत उम्र उनकी उम्र प्राय हमने 90 वर्ष की उम्र में नहीं, और एक तो थे लंबे से थे नहीं, वो प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य नहीं थे, वो नरहरि प्रभु के कुल गुरु थे, नरहरि प्रभु को उन्होंने हरिनाम और दीक्षा दिया था पहले, और प्रभुपाद से नहीं थे, किंतु आत्मसमर्पण कर करके मठ में ही रहते थे, और मठ के सभी लोग जानते थे जे इनके दीक्षित शिष्य, और प्रभुपाद जी उनके हाथ से खाना पीना जो रसोई बनाते थे तो वो भी ले लेते थे, और वो सर्वत्र कहते थे कि हम मैं प्रभुपाद का शिष्य, प्रभुपाद से कहा जी हमको दीक्षा दे दी, अरे तुमको दीक्षा देने की अब क्या, तुम बाकी रह गया, तुम दीक्षित है, दीक्षित से भी बहुत होता है। हमने उनको दर्शन किया, गुरु महाराज जी के पास में आते थे, गुरु महाराज जी उनका बड़ा सम्मान करते थे, सभी प्रभुपाद के जितने शिष्य थे सभी लोग उनका उनका नाम मुझे याद है, पत्रिका वो भागवत है उसमें वो गौड़ी है जितने से मालूम है। इसलिए अनुगत्य ही शिष्यत्व है। शिष्य मैंने क्या, शासन जो स्वीकार करता है। इसलिए ऐसे मध्यम अधिकारी यदि हो और उन्नत हो, रसिक हो, तत्वज्ञ हो, निंदा इत्यादि शून्य हो, इनकी कृपा से ही, अहित की कृपा से ही ये रागानुगा भक्ति हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करेंगे और साथ साथ भगवान की भी कृपा अहित की आ जाएगी, और दोनों का मिश्रण से भगवती होकर के हमारे हृदय में ये रागानुगा भक्ति, अन्यथा नहीं। इसलिए यहां पर हंताय मद्रावला हरिदास जी के कृपा के अतिरिक्त, गिरिराज जी के कृपा के अतिरिक्त ये भक्ति का होना संभव पर नहीं है। कृष्ण के चरणों से हमारा मिलन नहीं होगा, इसलिए अंत में उनके चरणों की शरण होनी चाहिए। अब इस श्लोक की व्याख्या हम लोग राज राधिका जयतराले कृष्णाय कृष्णभक्ताय प्रभक्ताय नमो। वैराग्य जिग भक्ति रसन प्रयत्न अपायन मानुल भिक्षु मंडन कृपां बुद्धि विजा पर दुख दुखे सनातन श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महिमं। इसमें सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि, ये यहाँ पर जी गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई ये कुमकुम कहाँ से मिला, किसके चरणों का ये कुमकुम? तो कह रहे हैं कि यदि सर्वश्रेष्ठ नागर यदि है तो सर्वश्रेष्ठ नागरी का ही वो कुमकुम होना चाहिए, दूसरे का नहीं होगा। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नगर और उसको वो धारण कर रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक। असल में नागर और नागरी कृष्ण और राधिका जी के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, नागर और नागरिका। अंतिम उसकी सीमा वहीं पर समाप्त होती है, जगत में तो ये ही नहीं है, जगत में तो एकदम काम चुप, उसमें कृष्ण के सुख का कोई प्रश्न नहीं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ नागरी है कौन, उसके लिए उन्होंने भविष्यत पुराण का एक श्लोक दिया, पाल्ये अपि भगवान कृष्णः चक्रे, पहली बार अरंतुम माने रमण करने की इच्छा, क्रीड़ा करने की इच्छा उनकी हुई। इसके पहले मिलन की बात कहते हैं, वो वर्णन भागवत में नहीं करते हैं। तो इसके पहले अब यहाँ पर बतला रहे हैं किसी दैता का ही ये होगा कुमकुम, तो मिलन तो हुआ नहीं, तो ये कुमकुम आया कहाँ से, ये प्रश्न हो सकता है ना? हमारे गोस्वामी लोग बड़े रसिक हैं, देखने में ऊपर से पुरुष हैं, किंतु हैं कौन, कोई है राग मंजरी, कोई रूप मंजरी, कोई रस मंजरी, कोई लवंग मंजरी, कोई कुछ इसे के कम वाले कोई नहीं है। कोई ललिता है, कोई विशाखा है, कोई और भी है, ये साधारण नहीं। इसलिए और लोगों के वर्णन में कुछ भूल हो सकता है, किंतु हमारे जो गोस्वामी हैं इनके वर्णन में कहीं भी कोई भूल भ्रांति संदेह का अवकाश नहीं। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग अयोग्य होते हुए भी सब प्रकार से अयोग्य हैं, सब कुछ है, किंतु उस धारा में आए हैं जिस धारा में के हमारे पूर्वज लोग हैं, हमारे गोस्वामी लोग हैं, इनमें कहीं भूल भ्रांति इत्यादि का अवकाश एकदम नहीं। सुखदेव गोस्वामी को भूल हो सकती है, हम ये मान सकते हैं, किंतु रूपमंजरी और लवंग मंजरी को भूल हो जाएगा या विलास मंजरी, इन लोगों को भूल नहीं हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी का भूल नहीं होगा, ये बात समझ लो, हम कहने के लिए एक उदाहरण के लिए कह रहे हैं, ये इन लोगों से भी बढ़कर के ये रूप मंजरी और रति मंजरी लवंग मंजरी प्रभृति ये सब सखियां हैं। स्वरूप दामोदर देखने में ऐसे ही लगते हैं, किंतु वो कैसे हैं? जा काम अपि ब्रज कुले विशुभानु जाया प्रक्षस्य पक्ष पदविंग अनुरुद्धमान शब्दस्तदिष्ट खटनेन कृतार्थयन्ति देविंग नैश ललितांग। कोई भी हृदय में अभिलाषा करे कि मैं राधिका जी की दासी होंगी, कोई भी ब्रज में ऐसी भावना यदि करे और ये पता लग गया उनको ललिता जी को शब्दस्त दिष्ट घटने न कृतार्थ यंत्र कृतार्थ कर देगी, ऐसी है और सब गुणों में सर्वोत्तमा है ये ललिता जी, ये साधारण सब नहीं है। इसलिए और लोगों को भूल हो सकती है, इन आचार्यों को हमारे जो हैं सनातन गोस्वामी वैष्णव तोषिणी के लिखने वाले विलास मंजरी जीव गोस्वामी वो अनु वैष्णव तोषिणी, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी या दिग्दर्शनी सारार्थ दर्शनी इत्यादि के साथ कहीं भी भूल भ्रांति। इसलिए समस्त संप्रदाय के लोग बाध्य हैं इनके विचार लेने के, नहीं तो वो भागवत पाठ उनका कोई सुनेगा ही नहीं। यहाँ के बड़े बड़े मायावादी लोग अखंडानंद सरस्वती करपात्री महाराज और जो भागवत करते थे साहब, इनका जूठन लेकर के और जगत में इतना नाम कर बोलने की शैली और इन लोगों का भाव ले लिया, तो इसलिए इन लोगों का भूल नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं भाग भविष्य। तब वो राधिका जी मिली, कहा यदि मान लिया जाए जराश शरदराज के समय में ही प्रथम इनका मिलन हुआ, तब तो फिर पहले राधा जी से इनका मिलन कहा हुआ या किसी भी सखी से जिसके चरणों जिनके श्री अंगों का कुमकुम उसमें आ गया? तो कहते हैं नहीं, ऐसा मत समझो जो उसके पहले कोई मिलन ही नहीं हुआ, मिलन इनसे होता था और ये पूर्वराग मिलन के बाद भी बना रहता था, ये कहीं संभव है? हैं? मिलन हो गया पूर्वराग रहा, ये तो हो जाएगा गड़बड़। नहीं, मिलन नित्य हो रहा है और पूर्वराग भी उनका नित्य है, गुड़ चीनी बन जाएगा ना? तो गुड़ गुड़ नहीं रहेगा, वो चीनी बन जाएगा। किंतु हमारे यहाँ राग अनुराग बन गया किंतु राग राग भी रहा, श्रद्धा से आरंभ करके उसकी दशमी, दशमी माने प्रेम अवस्था और उसकी दशमी महाभाव है? ये सब वो श्रद्धा जैसा का तैसा रहा और वो बढ़ता हुआ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान राग प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव इत्यादि तक बढ़ता हुआ चला गया, किंतु श्रद्धा और एक एक स्टेज जो था जैसा का तैसा बना रहा और वो बढ़ता गया। ऐसा विचित्र जगत में ये कोई चीज नहीं देखी जा, कोई चीज है ही नहीं विश्व में इसके तुलना के लिए, बस वही तुलना है आप नहीं आओ। तो इसलिए पूर्वराग भी रहा मिलन भी रहा, मिलन भी नित्य है और पूर्वराग भी। कृष्ण की जब प्रत्येक लीलाएं ही नित्य है तो ये क्यों नहीं नित्य होगा? इसलिए राधा जी के साथ उनका मिलना हमारे गोस्वामी ग्रंथों में जदा कदा सर्वत्र ही उसका वर्णन किया है, इसलिए इसमें संदेह की कोई बात नहीं है, पहली बात ये। अब रहा किसी ने वर्णन किया तो राधा जी का स्वयं श्री अंग का राग था, और कोई कहते हैं जैसे ये गोपियों का, इसी श्लोक में पूर्ण रूप से इसकी अभिव्यंजना नहीं हुई। पूर्णा पुलिंद उर्गाय पदाब्ज राग श्री कुंकुमेन दैता स्तन मंडित न दैता, दैता बस का करके छोड़ दिया, दैता माने प्रिया। अब ये प्रिया कौन? रास के समय में कोई गोपी जिसका चरण चिन्ह कृष्ण के चरणों के बीच में था उसको गोपियों ने देखा काश्चित, किसी का, किसी एक गोपी का चरण कृष्ण के चरण है और उसके बीच बीच में उनको देखा। थोड़ी देर के बाद में देखा जो उस गोपी के का चरण चिन्ह नहीं है, कृष्ण का चरण चिन्ह कुछ अधिक डूबा हुआ है, गहरा है। फिर देखा कुछ देर के बाद में, भाई अब तो चरण चिन्ह किसी के नहीं है, किसी के बैठने का चिन्ह और वहां पर कुछ पुष्प गिरे हुए हैं और वहां पर कृष्ण के चरण चिन्हों का केवल पंजा पैरों का केवल है, एड़ी नहीं है। उन्होंने अनुमान क्या किया, उसको अपनी प्रिया को यहां पर बैठा दिए, पहले तो उसको गोदी में ले लिए चलने लगे तो वो पैर कृष्ण का डबल करके गहरा हो गया, और फिर जब उसको बैठा करके अब जो जहां पर एड़ी का चिन्ह नहीं है मैंने ऊपर में पुष्प है, ऊपर की डाल को पकड़ने के लिए अपने पंजे के बल पर एड़ी को उठा करके खड़े होकर के पकड़ करके फूलों का चिन्ह और वहां पर कुछ फूल गिरे हुए थे, ओ यहीं पर उसका केश मंडन किया है। किंतु गए कहां, अब ये तो पता नहीं चल रहा भाई, यहाँ के बाद में अब तो थोड़ी देर तक तो देखा उसका चिन्ह, पुरुष का चिन्ह अब उसके बाद में न जाने कहाँ अलुप्त हो गया, और उस गोपी का भी चिन्ह अलुप्त हो गया। हुआ क्या, उन्होंने थोड़ी देर के बाद में कहा जैसे हमारे हमको कंधे पर लेकर के जहाँ चलने की इच्छा हो चलिए, मैं तो चल नहीं सकता, बस अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ अब आगे गए थोड़ी देर में ही तो देखा जो विलाप करती हुई, ये किसका था। उन्होंने कहा अनाराधितो न्यून भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतम जान अनयत रहा। निश्चित रूप में ये गोपी सबसे अधिक आराधना की होगी। इसी का सूत्र लेकर के अनाराधितो ये इस शब्द से सुखदेव गोस्वामी जी का भाव टलमल हो गया और प्रसंग कुछ इधर उधर हो गया और उसके बाद ही अध्याय समाप्त उन्होंने कर दिया। फिर जब आरंभ किया तो फिर दूसरे जैसा भाव हो गया, अपने को संभाल नहीं सके। तो ये कौन थी अनाराधितो, निश्चित रूप में श्री राधिका जी। आराधना शब्द से इसका जोग किया और रण सते नमः और एक जगह वहां पर भी रण सते से, तो वहां पर भी उन्होंने व्यक्त किया है। कहीं काश्चित कभी जा या इत्यादि शब्दों के द्वारा राधिका को ही व्यक्त किया गया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में ही इसका वर्णन सुंदर होता है, इसलिए इस रूप में किया। यहां पर भी उसी तरह से यह राधिका के संबंध में ही दिखा गया, उनसे जरूर मिलन था। इसलिए ये पूर्णा पुलिंद उरुगाय पदाब जराग ये उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने ग्रहण किया, और किस रूप में ग्रहण किया, जहां पर कि भाव महाभाव, महाभाव का रूढ़ अधिरूढ़ और अधिरूढ़ का भी दो भाग करके क्या है वो मादन और मोदन, ये मादन का जहां पर परिभाषा दे रहे हैं उसमें ये पूर्णा पुलिंद लिया। मादन राधिका का अतिरिक्त और किसी में नहीं हो। मादन किसको कहते हैं, सब समय मिलन होने पर भी कभी मिलन नहीं हुआ, ऐसी भावना का नाम मादन होता है। वो राधिका जी में ही केवल एकमात्र विराजमान होता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा ये पूर्णा पुलिंद्या भी, राधा जी स्वयं ही अपने को ही किंतु विस्मित हो गई हैं, इसलिए अपनी अपनी बात ही कह रही हैं, किंतु दैता के रूप में शब्द देकर के कह रही, व्यक्त कर रही हैं। ये मेरे ही चरणों, ये मेरे ही श्रेयंग का ये कुमकुम है, इसको व्यक्त नहीं किया, एक तरह से विस्मृति हो जाती है। इसलिए दूसरी बात, ये राधिका जी की चरण रज कुमकुम था, इसको दूसरी हमारे श्रीमद् भागवत से ही प्रमाणित होता है। कहे कैसे, द्वारका लीला में रुक्मणी प्रभृति महिषियां कह रही हैं, कामयामह एतस्य श्रीमद् पादरजस्या कुंच कुंकुमाढ्यं मूर्धन्य बोढ़ गदावृत ब्रजस्त्रियो यद वांछति पुलिंद तरुणी तरुण विरुद्ध कह रही है। यहाँ पर कामयामह एतस्य, अहम हम लोग कामना करती हैं, अभिलाष करती हैं, किस चीज की, श्रीमद् पाद रज श्रिया, श्रिया श्रिय श्रियौ श्रिया लक्ष्मियों के श्री चरण की रज की, रज को हम अपने सिर पर धारण करके अपने को कृतार्थ समझेंगे, ये भावना। यहाँ पर श्री का बहुवचन क्यों किया गया? एक वचन है, तृतीया का एक वचन। अच्छा, तो तृतीया का ये एक वचन है, और यदि उसको बहुवचन भी मानेंगे तो किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग भी हो सकता है दोनों। और इस तरह से सिया, सिया के द्वारा तृतीया में, तो सिया यहां पर कहा जिसको, या राधा जी कैसे इसमें हो जाएगा? यदि श्री शब्द का अर्थ लेंगे तो हमारे ब्रह्म संहिता में कहा गया है क्या,
श्री कांता कांत परम
पूर्ण, ना ये नहीं, अब वो है समस्त गोपियां ही श्री हैं, वेणुक नहीं, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षा प्रत्येश्वरभि रवि पालयंतम लक्षी सहस्र शतश। लक्षी सहस्त्र माने यहाँ पर कोटिश अगणित, यहाँ पर अगणित लक्ष्मिया है, इसे लक्ष्मिया का अर्थ तात्पर्य हुआ। और श्रीय कांता वहां पर भी लक्ष्मी ब्रज गोपियों के लिए कहा गया, तो यदि ब्रज स्त्रियों के लिए ही यदि लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, श्री शब्द का, तो किसी भी गोपी का हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। आप राधा जी को ही कैसे लाते हैं? राधा जी लाने का एक कारण है भाई, जरा भीतर में प्रवेश करके देखो क्यों। रुक्मिणी जी कहती हैं, ब्रजा स्त्रियों बाजम छन्ति, ब्रज की जितनी स्त्रियां हैं उसी श्री चरण की रज को वांछा करती हैं ना? तो वो ब्रज की स्त्रियां जितनी हैं किनके चरण की, वैसी कौन सी गोपी है जिसके चरण रज की इच्छा रखती है? कोई उनमें प्रधाना होगा, तो इनमें प्रधाना कौन है? वही श्रीमती जी ही प्रधाना है, इसलिए उन्हीं की चरण की रज को ये भी। और पुलिंद्या अपि, पुलिंद्या माने वो पुलिंद स्त्रियां, रमणियां, किशोरियां, वो भी इन्हीं के चरण की धूली को चाहते हैं। किनके? राधा जी के चरण की और रज को चाहती हैं, हम भी चाहती हैं। और यही कारण था कि 16,000 महिषियों में से जिनको नरकासुर के उसमें बंद कर दिया गया था, नरकासुर ने बंद किया था, कृष्ण ने उनका उद्धार किया, उन लोगों की भावना यही थी कि गोपियों की चरण धूली हम कैसे प्राप्त करें, इसलिए उन लोगों ने सब समय वो भावना करती थी।
यू कैन
ओ हाँ, क्या बतला रहा था?
नरकासुर की
पत्नियां उनकी जो कि नरकासुर के जल में आबद्ध थी, सब समय उनकी भावना रहती थी ब्रज की स्त्रियों की चरण रज को हम प्राप्त कर सकते, इसलिए अंतिम लीला में कृष्ण ने आदेश दिया अर्जुन को, हमारे अप्रकट लीला के पश्चात में तुम इनको अपने पास में हस्तिनापुर में ले जाकर के वहां पर खूब आदर के साथ में रखना। कृष्ण की लीला प्रकट हुई और अर्जुन अपने गांडीव धनुष के साथ में अपने रथ पर चढ़ करके, दूसरे पहले वाला रथ तो खत्म हो गया था, तो उस पर चढ़ करके और इनको लेकर के जा रहे थे। जब गए महाराष्ट्र के किसी प्रदेश में तो गोपों ने लूट लिया उनको, गोप माने अहिर, अहिर दस्युओं ने उनको लूट लिया। और उस समय में अर्जुन गांडी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो उनसे चढ़ी नहीं, एक बाण भी उस पर नहीं चढ़ा सके, ना जाने बल विद्य कहां चला गया। तो कह रहे हैं जैसे ये कृष्ण के साथ ही साथ वो चला गया। अंत में वो जब बाण नहीं छोड़ सके तो उसको लठिया की भांति ऐसे चलाना, तो वो भी नहीं उठा, असहाय हो गए, आंख से आंसू निकल आए। वो कृष्ण के समय मैंने पृथ्वी को हम एक छत्र परास्त कर दिया रायसुई यज्ञ में, आज मैं एक धनुष भी नहीं उठा सकता, और ये अहिर छोटे छोटे लठियों के साथ में ये सब स्त्रियों को कृष्ण को लूट रहे हैं। वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हम लोगों को कुछ सांत्वना दी है कि कृष्ण की राजमहिषियों को ये लूट करके ले जाएंगे, अभी नहीं लूट सकते, या भी कृष्ण ही बने हुए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, और अहिरों के रूप में स्वयं आकर और उनको लूट करके अपने अप्राकृत अप्रकट लीला में इनको लेकर के जाए। वहां से ले आए हैं गोकुल में और इधर में यहां से गोकुल गए हैं, सब अपने नंद बाबा गोपियों को, गोप समाज को, गायों को, सबको लेकर के अप्रकट लीला में प्रविष्ट हो गए। इसलिए ये भी चाहती हैं जिनके चरण की रज को, किनकी, श्रीमती राधिका जी की। यहां पर ब्रज स्त्रीय वांछंती के द्वारा ये मालूम होता है ब्रज की स्त्रियां भी राधिका जी के श्री चरण की रज को चाहते हैं। क्यों? अरे कृष्ण स्वयं लगाते हैं उसको अपने सिर पर, उनको मनाने के लिए क्या क्या करने के लिए, तो और गोपियों के लिए तो बात ही क्या। और एक जगह कहा रुक्मणी तू द्वारकायां और राधा बिंदा बने। कृष्ण की दो प्रियाएं हैं श्रेष्ठ, द्वारका में रुक्मिणी वो लक्ष्मी है श्री, और वृंदावन में राधिका जी सर्वश्रेष्ठ है, ये हैं। यहां पर रुक्मिणी के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, रुक्मिणी के लिए प्रयोग नहीं होगा जो कोई उनकी प्रिया है उनका, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी नहीं थी, उनका कोई प्रसंग ही नहीं है। और लक्ष्मी जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग नहीं होगा, श्री है ना उसमें कुंकुमेन दैता, श्री दैता, लक्ष्मी के लिए वो दैता शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? कश्यानुभाव अश्चन देव विद्मे स्पर्शार, तो उसमें तो लक्ष्मी जी का अधिकार ही नहीं रहा, तपस्या आज तक ही करते 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 थक गई, रचपच गई, उनको तो वृंदावन में कृष्ण के चरणों की ही रज नहीं मिली और वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर सकी, तो फिर पूर्णा पुलिंद में उनका कोई प्रसंग आ ही नहीं सकता। एक और बात की भी संभावना है, वो क्या, कृष्ण की जितनी भी प्रियाएं उसमें दो मुख्य हैं, चंद्रावली और श्रीमती राधिका, यही दो सबसे श्रेष्ठ। इसमें चंद्रावली को ही ले लिया जाए तो क्या हर्ज है, बहुत हर्ज है, थोड़ा नहीं बहुत हर्ज है। कैसे, वो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी या रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि अपने रूप के बल से समस्त गोपियों को और विशेष करके अपने सौभाग्य बल नहीं सबको चंद्रावली बसकार बहुत दूर फेंक देती हैं उनके सौभाग्य को। इनका सौभाग्य इतना अधिक है, जहां पर चंद्रावली के साथ में उनका मिलन का वर्णन किया गया है, वृंदा जी वहां पर बहुत दूर से पहुंच जाती है, थोड़ी सी इशारा करती हैं, तो कृष्ण कहते अरे गाय तो भटक गई, और मालूम होता है कोई असुर आ गया, तुम ठहरो मैं अभी आ रहा, और ये कह करके निकल गए और वृंदा के साथ में ये देख रही है, झांक रही है कहां गए जाते हैं जरा देखो, तो झट अपने सुख पक्षी को भेज दिया जाओ इसके साथ, वो गया लौट करके संबादे वो तो राधा कुंड में वहां पर सखियों के साथ में प्रमत्त है, बस इनको भीषण मान हुआ। ऐसा ये सब प्रसंग सब उज्ज्वल नीलमणि में ये सब वर्णन किया गया है। फिर उनको तो इस तरह से दोनों उनकी प्रियाएं हैं, किंतु फिर भी उसमें लिखा कि इन दोनों में भी राधिका जी सर्वश्रेष्ठ हैं।
तयो उभयो मध्ये राधिका सर्वदा अधिका।
और एक बात और कहा
ललिता विशाखा के संबंध में भी स्त्री क्यों नहीं दिया जाएगा? तो उसके लिए कहते हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता है, राधिका पर देवता, राधिका के लिए पर देवता के लिए पर देवता कहा गया। पर देवता माने क्या? श्रेष्ठ देवता, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी और कृष्णमयी, कृष्णमयी भी है। ये राधिका के लिए ये सब विशेषण है और किसी के लिए नहीं, इसलिए लक्ष्मी कहने से ही उन्हीं का ही नाम आएगा और उन्हीं के ही श्री अंगों का वो कुमकुम था, ये निश्चित। इस प्रकार से हमारे गुरुस्वामियों ने निर्धारित किया। इसको भाव को कुछ छिपाने लगी लज्जित होकर के, तब वो कहती हैं हंता है मद्र बबला हरिदास बरजो जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानंग तनोति सह गो गण यो तय पानी असु यव सकंदर हंताय मत्र अत्रि अबला। अबला कहने का तात्पर्य कल हमने बतलाया था शायद, हाय हाय हमारे जैसा असहाय कोई नहीं, वृंदावन में रह करके भी, गोप जाति में जन्म लाभ करके भी, तरह तरह के संबंध रख करके भी, बाल्य के साथ काल से एक साथ में रह करके भी, इन पुलिंदियों को, इन हिरणों को, इन मेघों को, इन पशु पक्षियों को जो सौभाग्य है हमें नहीं प्राप्त हो सकता। हम असहाय हैं, विवश हैं, सभी हमारे विरुद्ध ही हैं कृष्ण से मिलने, सब कुछ जाति के लोग, संबंधी लोग, कुटुंब के लोग, यहां तक कि जोग माया भी हमारी सहायता नहीं कर करके, होना चाहिए था विवाह कृष्ण के साथ में, विवाह करवा दिया कहां 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 सब करवा दिया, ये जोग माया भी। इसलिए हम जैसा असहाय जगत में कोई नहीं, इसलिए अबला, बला बलयुक्त, और यहां पर हो गया अबला। कहंता है
तब तक कृष्ण लीलाओं के जो तत्वीज है, साधारण लोग नहीं, ब्रह्म परमात्मा ये सब जो तत्वीज है वो लोग कहते हैं कि अव्यय ज्ञान सत्य है, परंतु सत्य विदर्भ जब ज्ञान अध्ययन, अव्यय जो ज्ञान है वही परतत्व है, इसे तत्व विद कहते हैं। एक तो है ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये क्या माया, क्या तत्व है जीव, क्या तत्व है भक्ति, क्या तत्व है ज्ञान, क्या तत्व है, ये सब बहुत प्रकार के तत्व है। इसमें भक्ति ही का एक तत्व है, प्रेम भी तत्व है, स्नेह तत्व है, अनुराग तत्व है, महाभाव तत्व है, तो ये सब उसको तत्व को जो जानने वाले हैं मतलब सबको। अच्छा इनमें से जो कुछ भागवत में जो लीला वर्णन किया गया उसमें सुखदेव गोस्वामी ने क्या तत्व छोड़ा? सुखदेव गोस्वामी जी को क्या कहा जाए?
तत्वी,
वो तत्वी में सर्वतत्वविद है, मत ये सोचना जो केवल वेदांत का जो वो भाग है निरस अथवा निर्विशेष, वो नहीं,
अब तो मैंने वो भी तत्व यहाँ पर ले लेना पड़ेगा, उस तत्व को ये भी ऐसा लोगों को कहते हैं जो ऐसे परम तत्व भी वो कहते हैं क्या अद्वैत ज्ञान ही
प्रथम।
वो अद्वैत ज्ञान क्या कृष्ण के बिना दूसरा कोई तत्व नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र समस्त तत्वों के आधार, उनसे उनकी शक्ति एक होने के कारण शक्ति के द्वारा जो भी विचित्रताएं हैं जो भी विचित्रता है वो कृष्ण का ही हो गया, इसलिए अद्वैत ज्ञान। उनकी साधारण तरह से तीन शक्तियां चित जीव
माया
और माया, किस शक्ति से जो कुछ प्रकाशित हुआ है वो चित तत्व है, उसमें चित विलास इत्यादि सब कुछ आ गया, कोई बाकी नहीं रहा, सब कुछ उसमें आ गया। तो शक्ति का प्रकाश और एक है जीव शक्ति का प्रकाश, उसमें हम विविध प्रकार के कोटि कोटि प्रकार के जीव और कैसे उन्होंने संस्थापित किया है, किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को गधे बना दिया, भेड़ा बना दिया, पक्षी बनाया, कीट बनाया, और एक एक के अंदर में एक एक अलग अलग भाव। वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनका स्वभाव चरित्र गुण रूप सब एक प्रकार का होगा, कहने से गाय एक, कोई भी गाय जगत में कोटि कोटि गायें एक तरह की होंगी, कोई मान लिया कि स्त्री, कोई भी स्त्री एक तरह की होगी नहीं, कोई भी पुरुष एक तरह का नहीं। इतने प्रकार के जीव बनाए और एक ही स्टेज के नहीं बनाए, कोई मुक्त कोई बद्ध कोई अत्यंत बद्ध कोई अत्यंत मुक्त कोई बीच का मुक्त, जितने हम लोग जीव हैं हम लोगों पर माया जो काम कर रही है एक प्रकार से कर रही है, सब में एक तरह का ज्ञान एक तरह का ये भाव कुछ भी है कुछ भी नहीं। ये इतनी विचित्र चीजें बनाई है भगवान, यदि इस पर हम लोग ध्यान करें तो ये हम चमत्कृत हो जाएगा। और ये माया जड़ जगत की ऐसी ऐसी चीजें बनाई, विचित्र विचित्र तरह की चीजें जो मन को आकर्षण कर लेंगे, मन को विजुक्त कर देंगे, कैसे कैसे तरह की चीज विचित्र चीजें बनाई, अद्भुत। ये सब शक्ति का प्रकाश है, मूल रूप में ये तीन चीजें, और उनमें अपने ग्लादिनी संबित और संगनी को कैसे कैसे उनमें भरा है ये सब विचार करेंगे तो कोई आदि अंत और था नहीं पाएंगे। अब उनकी विपरीत प्रकार की प्रतीतियां हैं, प्रतीति एक ब्रह्म एक परमात्मा और एक भगवान, पहला ब्रह्म प्रतीति होता है।